सूरत जुम्र मक्की सूरत है, इसके 8 रुकू और 75 आयात हैं, जबकि अल्फाज और कलिमात की तादाद 1184, 1184 हुरूफ की तादाद 4965, 4965 इस सूरत का नाम आयात नंबर 71 और 73, 71 और 73 से लिया गया है। वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नती ज़ुमरा। ये जहन्नुम की तरफ जो लोग हांक कर ले जाए जाएंगे वो कुफ्र करने वाले होंगे, और ज़ुमरा का मतलब है ग्रो दर ग्रो, और जन्नत की तरफ जो लोग ले जाए जाएंगे वो मुत्तकी होंगे और वो भी ग्रोह दर ग्रोह होंगे। एक तरफ ये बहुत ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली और डराने वाली सूरत है, और दूसरी तरफ जो है ये एक उम्मीद और जन्नत का शौक पैदा करने वाली सूरत है। मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, ये वो सूरत है जिसके बारे में हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरत बनी इसराइल और सूरत जुमर की तिलावत किया करते थे। इस सूरत में तौहीद, रिसालत, आखिरत और अहकाम और फराइज जो है इन्हें बड़े बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है, बताया गया है कि ये अकायद ही, ये दीन ही हक है, और लोग इसको माने तो उनका फायदा है और ना माने तो उनका नुकसान है। आप याद रखें, ये पूरी सूरत जो है एक बेहतरीन मुअस्सर खुतबा है। हिजरत हबशा से कुछ पहले, जबकि मक्का में मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म व सितम हो रहा था, तो उस वक्त जो है ये सूरत नाजिल हुई, और एक तरफ ये इशारा दिया मुसलमानों को कि वह अर्दुल्लाही वासिया, कि अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है और आप यहां से हिजरत कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है अहले ईमान को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि मुसलमानों को और इंसानों को खालिस अल्लाह की बंदगी इख्तियार करनी चाहिए, किसी की जरा सी भी इबादत ना की जाए, जरा सा भी शिर्क ना किया जाए। और इस सूरत में आप बार बार तौहीद का मजमून पढ़ेंगी, और शिर्क जो है उसकी निहायत जोरदार अंदाज में जो है उसके रद्द के बारे में आप पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। अब आप देखें कि तंजील के बारे में आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि दर्जा बदर्जा जरूरत के मुताबिक एहतमाम से नाजिल करना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तंजीलू, कि ये किताब जो है ये दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता बड़े एहतमाम के साथ नाजिल की गई है। अल किताब ही खास किताब है, मिनल्ला ही अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल हकीम वो अल्लाह जो के अजीज है और हकीम है, यानी सिर्फ कुरान को उतारा नहीं है बल्कि एहतमाम के साथ उतारा है, और जिसने किताब नाजिल की है बेबस हस्ती नहीं बल्कि गालिब है, जो चाहे कर सकता है, कोई उसके इरादे में मजाहमत नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ वो हकीम भी है कि अगर अल्लाह के रास्ते में ईमान लाने के नतीजे में तकलीफें पेश आ रही हैं तो यकीनन इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। कोई बात अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती और हिकमत के बगैर नहीं होती, तो मुनकरीन के लिए डरावा है और ईमान लाने वालों के लिए जो है ये हदायत है कि कुरान की जो है वो कदर करें, कुरान पर अमल करें, कुरान पर ईमान लाएं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। इन्ना अनजलना इलैकल किताब बिल हक्की फबुद्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। इन्ना अनजलना, बेशक हमने नाजिल किया है, इलैका आपकी तरफ। तो पहली चीज क्या है कि किताब को नाजिल करने वाली कोई मामूली हस्ती नहीं है, अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। दूसरी बात, इलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब को नाजिल किया गया। अल किताब, खास किताब, बिल हक की बरहक, यानी कुरान के अंदर जो कुछ है हक है, सच्चाई है, इसमें बातिल की कोई आमेजिश नहीं है। फबुदिल्लाह, बस आप अल्लाह ही की बंदगी कीजिए। अब आप देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कुरान ये फैसला कर रहा है, किताब जो हक है वो ये फैसला दे रही है कि अल्लाह ही की बंदगी, खालिस अल्लाह की अताअत करो। मुखलिसन खालिस, लहुद्दीन, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए अल्लाह की बंदगी की जाए। प्यारी बहनों, आप देखिए, यानी हम तमाम मुसलमानों के लिए यहाँ पर खास तौर पर दो बातें हैं। पहली चीज, अल्लाह की इबादत का मुतालबा, फाबुदिल्लाह, अल्लाह की इबादत का मुतालबा। दूसरी चीज, ऐसी इबादत जो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके की जाए, मुखलिसल्लाहुद्दीन, यानी दीन अल्लाह के लिए खालिस हो। इखलास का मतलब यह है कि अल्लाह की रजा की नीयत से नेक अमल किए जाए, नीयत के अंदर इखलास हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो अमल जो कि अल्लाह के लिए किया जाए और अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और सुन्नत के मुताबिक हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, वही अमल है जो कि अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार सुनो, दीन खालिस अल्लाह का है। अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि दीन जो है खालिस अल्लाह का है। आपको ये बात पता होगी कि दीन जो है इसके चार मानी हैं। एक मानी तो ये है कि कयामत का दिन, दूसरे मानी ये है कि दीन इस्लाम, तीसरे मानी ये है कि अल्लाह ताला की हर वक्त की गुलामी की जाए, उसी की इबादत की जाए, और एक मानी ये है कि किसी मुल्क के कानून के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार दीन खालिस अल्लाह का हक है। तो इसके माने ये हैं कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके उसकी बंदगी की जाए, किसी और का कहना नहीं मानना, किसी और की परस्तिश नहीं करनी, किसी और की मर्जी पर नहीं चलना। इस आयत की बड़ी बेहतरीन एक तफसीर है जो हदीस से मिलती है। इब्ने मर्दुइया कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह से पूछा कि हम अपना माल देते हैं इसलिए कि हमारा नाम बुलंद हो, तो क्या हमें इस पर कोई अजर मिलेगा? हजूर ने फरमाया, नहीं। इसने पूछा, अगर अल्लाह के अजर और दुनिया की नामवरी, यानी दुनिया में इज्जत दोनों की नियत हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कोई अमल भी कबूल नहीं करता जब तक कि वो खालिस उसी के लिए ना हो। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत की। मसलन आप रोजा रखते हैं, साथ ही ये नियत कर लेते हैं कि मैं साथ ही कि मैं स्मार्ट बन जाऊं, मेरी डाइटिंग हो जाएगी, तो इसका कोई अजर नहीं है। इसी तरह आप अल्लाह के रास्ते में सदका देते हैं और आप चाहते हैं कि लोग सखी कहें और अखबारात में आपका नाम आए, वाह वाह हो, तो इसका फिर कोई अजर नहीं है। हत्ता कि कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन मकसद ये है कि लोग कारी कहें, तो अल्लाह के यहाँ इसका कोई अजर नहीं। तो वो लोग जो रियाकारी करते हैं, बड़ी ही डराने वाली हदीस है सही मुस्लिम की, कि कयामत के दिन जो है वो एक कारी को, एक सखी को, एक शहीद को और एक जो है वो आलिम को जो है वो अल्लाह ताला फरिश्तों से हुक्म देंगे कि इसके माथे के बालों से पकड़कर घसीट कर इसको जहन्नुम के अंदर डाल दो, कि इसने इतने बड़े बड़े इन लोगों ने काम किए लेकिन दिखावे के लिए, दुनिया के लिए, तो अल्लाह के यहाँ इसका जो है वो कोई अजर नहीं है। तो याद रखें, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार दीन खालिस अल्लाह का हक है। वल्लज़ीन अत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, दूसरे सरप्रस्त बना रखे हैं, तो वो इसकी क्या वजाहत पेश करते हैं? वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे अपने कारसाज वली बनाए हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मा नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते इनकी इल्ला मगर इसलिए, लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, कि हम तो इनकी इबादत से सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करवा दें, इल्ला लियुकर्रिबूना, ताकि वो हमें मुकर्रब बना दें, इलल्लाहि अल्लाह का जुल्फा नजदीकी करीबी। तो जुल्फा का जो लफ्ज है, जुल्फ जा लाम फा, जुल्फ करीब और नजदीक के लिए इस्तेमाल होता है। बालों की ये लट जो माथे के करीब होती है उसको भी जुल्फ कहते हैं ना। इसी तरह हम जुल्फ, जो दो बहनों के शोहर होते हैं वो आपस में हम जुल्फ कहलाते हैं। पहले कुछ भी नहीं था, जब इस तरह रिश्ता हो गया दो बहनों, यानी दो बहनों से दो मुख्तलिफ जगह पे रहने वाले दो लोगों की जब शादी हुई तो आपस में वो हम जुल्फ हो गए, करीबी हो गए। तो जुल्फ का मानी है करीबी नजदीकी। तो वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे हस्तियों को पूजते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ही को मानते हैं माबूद, तो ये जो बुजुर्ग हस्तियां हैं हम इसलिए इनकी पूजा करते हैं या हम इनको भी मानते हैं ताकि इनके जरिए से हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, यानी हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी जो है वो रसाई करवा दें। तो अल्लाह का कुर्ब ढूंढने के लिए हम जो है वो इनको पूजते हैं। तो अब आप देखें कि यहां से ये बात पता चलती है कि अहले मक्का जो थे अल्लाह ताला ही को खालिक राजिक मानते थे, और वो दूसरों की इबादत क्यों करते थे? यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनका ये कौल नकल किया है कि वो ये समझते थे कि इनके जरिए से हमें अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा या ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर देंगे। जैसे सूरत यूनुस में आप पढ़ चुकी हैं, सूरत यूनुस आयत नंबर 18 में, कि हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, के ये मूर्तियां या ये हमारे बुत जो हैं ये अल्लाह के पास हमारी जो है वो सिफारिश करवा देंगे। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून, अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो है अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दुनिया में तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है ना कि वो शिर्क कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। तो कयामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला फैसला करेगा कि इन्होंने क्या किया था, कैसे शिर्क किया था। इन अल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून, अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ्फार, अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हदायत नहीं देता जो झूठा हो और मुनकरे हक हो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक काजिब का, दूसरे कुफार का, और दोनों में वो बालगे का सीगा है कि इन्होंने झूठ मूठ जो है वो शिर्क का अकीदा घड़ा है और फिर दूसरों में इसको फैलाते हैं, काजिब है ये, झूठे हैं, और फिर उसके साथ ही कहा कि ये जो है वो इनकार करने वाले हैं, कफार हैं, निहायत ना शुक्रे हैं, अल्लाह की नेमतें पा रहे हैं और फिर उस समझते हैं कि इनके माबूद जो हैं इन नेमतों के देने में अल्लाह के साथ जो है वो शरीक है और ये बात जो है ये गलत कर रहे हैं। लो अराद अल्लाह वलदन, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता लस्तफा मिम्मा यखलुकु मा यशा, तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगुजीदा कर लेता। लस्तफा, लस्तफा के मानी है तो वो मुंतखब कर लेता, यानी किसी को उसकी जो है तहारत और पाकीजगी की वजह से चुन लेना। तो अगर अल्लाह ताला का ये इरादा होता कि वो किसी को अपना बेटा बना ले, तो लस्तफा तो वही मुंतखब कर लेता, मिम्मा इसमें से जो, यखलुकु मा यशा, जो वो पैदा करता है, जो वो चाहता है, तो जिसको चाहता फिर वो अपने लिए चुन लेता। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अव्वल तो कोई भी जो भी दुनिया में है वो सब अल्लाह की मखलूक है, और कोई मखलूक कितनी ही बरगुजीदा क्यों ना हो जाए वो खालिक खालिक के मर्तबे को नहीं पहुंच सकती। दूसरी बात, अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो वो जिसको चाहता बेटा बना लेता। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह का तो इरादा ही नहीं है कि कोई उसके साथ जो है वो खुदाई में शामिल हो। और अहले मक्का क्या करते थे, उन मुशरिकीन का अकीदा था कि लड़कियां जो हैं यानी फरिश्तों को वो अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, यानी मखलूक में से खुद अपने लिए लड़कियों को पसंद नहीं करते थे कि वो कमजोर होती हैं, और अल्लाह ताला के लिए कहते थे कि फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो यहाँ पर जो उनका अकीदा था शिर्क का, अल्लाह ताला उसको रद्द कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से किसी को भी अपना अपने साथ शामिल नहीं किया। तो आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है ये बात बताई जा रही है कि सारी कायनात को अल्लाह अकेला कंट्रोल कर रहा है, और अल्लाह ही खालिक है, और अल्लाह ही मालिक है, और अल्लाह ही हाकिम है, और फिर अल्लाह ही की इबादत और बंदगी जो है वो करनी चाहिए। फिर आयत नंबर 5 से लेकर 8 तक अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को क्यों बनाया, दुनिया को बनाने का मकसद क्या है। फरमाया खलक समावाती वल अर्द बिल हक, अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, यानी ऐसे ही पैदा नहीं किया जैसे कोई लंडड़े का खेल है, बच्चे एक खेल से खेलने के लिए घर बनाते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं, नहीं, बल्कि इसको बनाने का एक मकसद है। और क्या है, जजा और सजा। युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली, वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है, जैसे किताब को कवर करते हैं ना उसको लपेटते हैं। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि युकव्विरु काफ वौरा, किसी चीज को लपेटना और उसको ऊपर तले घुमाना। तो अल्लाह ताला दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता हुआ चलता है, यानी ये दिन और रात का आना जाना जो है ये क्या है, ये इस बात की दलील है कि दुनिया के बाद जो है वो आखिरत होगी। वसखर शम्स वल कमर, और उसी ने सूरज और चांद को मुसखर कर रखा है। कुल्लू यजरी लि अजल मुसम्मा, के हर एक एक वक्ते मुकर्रर तक चला जा रहा है। अला हुवल अजीजुल गफ्फार, याद रखो वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला भी। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने कायनात से मिसाल दी है, एक तरफ रात, दूसरी तरफ दिन, तीसरी तरफ सूरज, चौथी तरफ चांद। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये अल्लाह की कुदरत के कमालात हैं, कि रात आती है तो दिन गायब हो जाता है, दिन आता है तो रात गायब हो जाती है, दिन के वक्त सूरज की हुक्मरानी होती है और रात के वक्त चांद की। हर कोई अपना मुकर्रा काम जो है वो कर रहा है। याद रखो ये दलाइल हैं तौहीद के, ये दलाइल हैं आखरत के, ये दलाइल हैं कयामत के। जो रब रात को दिन में, दिन को रात में, और सूरज और चांद को जो है वो मुसख्खर करने पर कुदरत रखता है, वो इस बात पर भी कुदरत रखता है कि जो अल्लाह को तस्लीम करने से इनकार करे तो उस पर अजाब भेज दे, जो तौहीद का इनकार करे तो उसे पकड़ ले, और जो अल्लाह की तरफ रुजू करे तो फिर अल्लाह उसको जो है वो बख्श दे। तो ये दलाइल हैं जिसमें शिर्क को रद्द किया गया है और तौहीद जो है उसकी दलील दी गई है। तो याद रखना कि अल्लाह जबरदस्त है शिर्क करने वालों के लिए और अलगफार है अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों के लिए। तो आप देखिए कि आयत नंबर 5 में कायनात से दलाइल दिए हैं और आयत नंबर 6 जो है इसमें इंसान के वजूद से और जानवरों से, यानी अल्लाह ताला ने जो तखलीक के मराहिल हैं नफ्स के उससे दलाइल दिए हैं। खलकाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, उसने तुमको एक जान से पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो इंसान की इब्तदा हुई और फिर उसी से जोड़ा बनाया बीवी हवा और फिर आगे तमाम लोग जो थे फैला दिए। सुम्मा जाला मिन्हा ज़ौजहा, जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया, यानी पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनकी बीवी हजरत हवा को पैदा किया और फिर उसके बाद जो है इंसान पैदा होते चले गए। वह अंजल लकुम मिनल अनामी समानियत अजवाज, और उसने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर और मादा पैदा किए। ये आप पीछे सूरत अलानाम में भी पढ़ चुकी हैं। मवेशी से मुराद है खास तौर पर 4 जानवर, ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी। तो 4 उनके नर और 4 मादा, ये मिलकर नर और मादा 8 बन जाते हैं। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर और मादा पैदा किए। यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्कम मिन बाद खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास, यखलुकुकुम वो पैदा करता है तुमको फी बुतून उम्महातिकुम तुम्हारी माओं के पेटों में, खल्कम मिन बाद खल्किन एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है, फी ज़ुलुमातिन सलास 3-3 तारीख पर्दों में। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही है अल्लाह, ये है अल्लाह तुम्हारा रब जिसके ये काम है। लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाहत है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं उसके सिवा। फअन्ना तुसरफून, फिर तुम किधर फिर आए जाते हो। अब आप देखें कि यहां पर जो है खास तौर पर ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मां की पेट में किन मराहिल से गुजारते हैं। हकीर सा नुतफा, फिर अलका, फिर मुजगा, फिर हड्डियों का ढांचा, फिर उस पे गोश का लिबास चढ़ाया। तमाम मराहिल से गुजार कर जब कामिल इंसान बन गया तो मां के पेट का अंधेरा है, फिर दूसरा जो है वो रहम मादिर का यूट्रस का अंधेरा है, फिर वो झिल्ली जिसके अंदर बच्चा होता है मशीमा का अंधेरा। तो अब आप देखें कि अंधेरे पर अंधेरे हैं, 3-3 अंधेरों के अंदर वो कारीगरी करने वाला, वो जो है वो दिल के दिल की शरियाने बनाने वाला, जिस्म की छोटे छोटे नाजुक अजा बनाने वाला, ये सब करने वाला कौन है? ये अल्लाह ही तो है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रबूबियत की, अपनी कुदरत की, अपनी कारीगरी की, तखलीक के मुख्तलिफ मराहिल की जो है वो याद दहानी करवाई है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। सूरत मोमिनून आयत 14 को भी आप सामने रखें और यहाँ पे जो 3 तारीकियां हैं जिसमें रहम, पेट और मशीमा की जो तह बतह तारीकियां हैं, ये बता रही हैं कि अल्लाह जो है वो जमील है, फातिर है, खालिक है, मालिक है, और सिर्फ सूरज और बिजली की रोशनी पैदा नहीं करता, सिर्फ दिन और रात ही नहीं बल्कि 3-3 पर्दों के अंदर जो है वो हजरत इंसान को भी पैदा किया है। खूब जानता है कि माँ के पेट के अंधेरों में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, लोगो ये है अल्लाह तुम्हारा रब, तुम कहाँ शिर्क करने लगे, तुम कहाँ माबूदों के ऊपर झुकने लगे। ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाहत है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई नहीं माबूद मगर वही। फअन्ना तुसरफून, फिर तुम किधर से फिर आए जाते हो, फिर क्या हो जाता है कि तुम शिर्क करने लगते हो, तुम्हें कौन उल्टी पटियां पढ़ा देता है, तुम क्यों शैतान के बहकावे में आ जाते हो, क्यों नफ्स की पूजा करते हो, क्यों खानदान के रस्मों और रवाज के आगे झुकते हो, और क्यों जो है गुमराह हो जाते हो और गुमराह करते हो। तो ये आप देख लीजिए कि आयत नंबर जो है वो 5 और 6 में कायनात से, इंसान के वजूद से और समानियत अजवाज से सबसे दलायल देकर एक ही बात कही, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। और आयत नंबर 5 में जो काफ वा रा का लफ्ज है, युकव्विर का, काफ वा रा, जैसे पगड़ी को नहीं गोल लपेटा जाता सर के इर्द गिर्द, पगड़ी सर के गिर्द लपेटी जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला दिन को लपेटता जाता है तो रात आ जाती है, और रात की चादर को लपेटता है तो दिन आ जाता है। तो इतना बड़ा काम करने वाला कौन है? अल्लाह, उसी की बादशाहत है। तो जब वो बादशाह है, वो मालिक है, तो उसकी मिल्क बन जाइए, वो हाकिम है तो उसके महकूम बन जाइए, वो खालिक है तो उसकी मखलूक बन जाइए, और वो माबूद है तो उसकी बंदगी कीजिए, और फिर धोखे से बाहर निकल आइए और शिर्क वगैरह करना जो है वो छोड़ दीजिए। इन तक फरू फाइन अल्लाह गनी अनकुम, अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है। यानी अगर इंसान जो है वो तौहीद परस्त नहीं बनता तो अल्लाह का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इंसान का अपना नुकसान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब अगले और पिछले इंसान और जिन अपने में से किसी फाजिर से फाजिर शख्स के दिल की तरह हो जाओ, तब भी मेरी बादशाही में कुछ कमी ना होगी। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इन तकफुरू फइन्नल्लाह गनीयुन अनकुम, अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है। अल्लाह की खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। लोगों, कुफ्र करने के नतीजे में जो नुकसान है वो तुम्हारा अपना ही है। वला यरदा ले इबादेहिल कुफ्र, लेकिन वो तो बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता, वला यरता, और वो राजी नहीं होता, ले इबादे ही अपने बंदों के लिए कुफर के वो इनकार करें। वा इन तशकुरू, और अगर तुम शुक्र करो, यरबाहु लकुम, तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुझे ये बात पसंद ही नहीं है कि तुम लोग जो है वो कुफर करो। तो कुफर का ऑपोजिट क्या है? शुक्र। तो अगर लोग जो है वो शुक्र करेंगे तो अल्लाह को ये पसंद है। तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करना और फिर जो है वो अल्लाह की बंदगी करना, नमक हरामी ना करना, अल्लाह को राजी करना, इसके लिए जो है वो कहा जा रहा है। वह इन तश्करु यरदाहु लकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। थुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, आखिरकार तुम सबको अपने रब ही की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। आप देख लीजिए कि अब यहाँ पर तौहीद का पैगाम भी है आयत नंबर 7 में, और उसके साथ ही अकीदे आखरत बयान किया गया है कि कयामत के दिन जो है हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा। दूसरों को दुनिया में राजी करने के लिए अगर कोई फैशन गलत करता है बेहयाई का, अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई गीबत करता है, अगर कोई जो है वो गलत काम करता है, लेकिन कयामत के दिन जो है वो उसके काम नहीं आएंगे, फिर उसे अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गलत रवैया छोड़कर सही रवैया अख्तियार करें, अपने बच्चों की खातिर, अपने शौहर की खातिर, बीवी की खातिर, वालदैन की खातिर, दोस्तों की खातिर जो है अल्लाह को नाराज न किया जाए, क्योंकि कयामत के दिन जो है ये अल्लाह की पकड़ से नहीं बचाएंगे। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। थुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम,
आखिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना होगा, अल्लाह की तरफ जाना होगा, कहीं भाग नहीं सकते। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहां पे पनाह ले जा सके। फयुनबियुकुम, फिर वो जरूर ब जरूर बता देगा तुमको। फयुनबियुकुम बता देगा तुमको बिमा कुंतुम तामलून, कि तुम दुनिया में क्या करते रहे। और वो क्यों ना बताए और वो कैसे ना बताए, इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, क्योंकि वो दिलों के हाल तक जानता है कि दिलों के अंदर कुफर था तो या तौहीद थी, शिर्क था या फिर जो है वो अल्लाह की बंदगी थी। तो अल्लाह ताला जो है उसको लोगों के सब हालात जो है वो पता है, हर एक का पता है। तो प्यारी बहनों, ये आयात जो है ये डरा भी रही हैं और तवज्जो दिला रही हैं कि कुफर और शिर्क को छोड़कर तौहीद इख्तियार की जाए, अल्लाह की बंदगी इख्तियार की जाए और अपने अमलों के अंदर इखलास इख्तियार किया जाए। कयामत के दिन जो है अमाल को गिना नहीं जाएगा बल्कि उनका वजन होगा, और वजन जो है वो इखलास के मुताबिक होगा। जिसके अमाल में जितना ज्यादा इखलास होगा तो उनके अमाल उतने ही ज्यादा जो है वो वजनी होंगे। अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो क्वांटिटी मतलूब नहीं है, क्वालिटी मतलूब है। और क्वालिटी क्या है कि अमाल के अंदर इखलास पैदा किया जाए, और इखलास बहुत आम है और बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें अपने अमलों के अंदर इखलास पैदा करने वाला बनाए और हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जो कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी और अपने दिन जो है वो अल्लाह से डर कर जो है वो गुजारते हैं।